Kalpa Radio Exclusive Interviews. अर्पा रेडियो पर आज सुनिए कवि और लेखक श्री शरद कोकास से डॉक्टर द्वारका प्रसाद अग्रवाल की एक बातचीत।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
नमस्कार, आज आपकी मुलाकात मैं श्री शरद कोकास से करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि साहित्यकार हैं, दुर्ग में रहते हैं और कविता भी करते हैं, लेख भी लिखते हैं, साहित्य सृजन की सभी कलाओं में पारंगत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छे प्रस्तुतिकरण हैं इनकी कविताओं का। जिस वॉइस मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं वो सुनने योग्य है। तो अभी आपको उनकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी और उनकी कृतियों के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार शरद जी।
नमस्कार अग्रवाल जी, बहुत अच्छा लगा मुझे बिलासपुर में आप लोगों से मिलकर और मैं आज आप लोगों के साथ और हमारे यहाँ के श्रोताओं के साथ बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ।
आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि शरद जी स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक में सेवारत थे और अपनी सेवाएँ उन्होंने पूरी करने के बाद वो साहित्य सृजन में पूरी तरह से जुड़ गए। सेवा के दौरान भी कविताएं लिखा करते थे। तो मैं शरद जी से जानना चाहता हूं कि सेवा के दौरान नौकरी और कविता ये दोनों साथ साथ कैसे बनी?
ये आपने बहुत यक्ष प्रश्न जिसे कहते हैं उस तरह का ये सवाल है, सेवा करते हुए नौकरी कैसे की और वो भी बैंक की नौकरी। देखिए, मैं तो काफ़ी पहले से कविताएँ लिखता रहा हूँ और समझ लीजिए स्टूडेंट लाइफ से, रीजनल कॉलेज भोपाल में मैं पढ़ा, उज्जैन से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद दुर्ग के स्टेट बैंक में मेरी नौकरी लगी। मज़े की बात यह कि बिलासपुर से ही मेरा इंटरव्यू हुआ था और यहीं से मेरा चयन हुआ। तो बैंक में नौकरी करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि बैंक की नौकरी जो है वो बहुत कठिन है और लगभग 8 घंटे 10 घंटे तो निकल जाते हैं। तो कविता कब लिखें? तो कविता असल में जैसे ही हम सुबह जागते हैं तब हमारे मन में जन्म लेती है। आसपास हम निकलते हैं, दृश्य देखते हैं, झोपड़ी देखकर भी कविता मन में आती है और महल देखकर भी कविता मन में आती है। अमीरों को देखकर भी कविता याद आएगी तो गरीबों को देखकर भी कविता याद आएगी। साइकिल चलने वाले को भी देखकर कविता याद आती है और कार चलाने वाले को भी देखकर आती है। तो कविता मन में आ जाती है, धीरे धीरे पकती रहती है और जब हम लिखने बैठते हैं, ठीक है, समय तो मिलता है, जैसे भोजन के लिए समय चाहिए, सोने के लिए समय चाहिए, वैसे कविता के लिए भी समय निकालना होता है। तो कविता के लिए समय निकाल कर मैं उसको लिखता था।
तो आपको कौन सा समय सूट करता था कविता लिखने?
मुझे रात का समय। और बड़ी मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने लंबी कविता मेरी पुरातत्व वेदता लिखी, जो 60 पेज की एक कविता है, जो पहल में प्रकाशित हुई थी जबलपुर से, तो उसको लिखने के लिए मैं, मेरी उस समय जो नौकरी थी वो 12 बजे से लेकर रात को 8-8:30 बजे तक थी। तो मैं 8 बजे लौटता बैंक से, उसके बाद नहा के खाना खा के मैं 10 बजे लिखने बैठ जाता और मैं सुबह 5 बजे तक लिखता था।
पूरी रात लिखती?
पूरी रात 5 बजे तक। 5 बजे लिखने के बाद मैं उठता, चाय वाय पीता, बीच में भी पीता रहता था और उसके बाद मैं सो जाता था और फिर मैं जागता था 10:30-11 बजे और जागता था और नहा धोकर खाना खाकर मैं बैंक चला जाता था।
एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कविता लिखना भी तपस्या है क्या?
ये आपने जो सवाल किया ये दरअसल ऋषि मुनियों से पूछा जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कवि भी ऋषि मुनि जैसे ही होते हैं, आप भी जैसे साधना करते हैं, लेकिन लेखन एक साधना है। तो तपस्या जिसको कहते हैं वो सच बात है कि एक तरह की तपस्या है। आजकल जैसे कई कवि आपको मिल जाएंगे जो चलते फिरते बोले हम तो लिख देते हैं कुछ भी लिख, कविता नहीं होती। कविता वास्तव में एक साधना है, एक तपस्या है। कोई भी विचार या कोई पंक्ति आपके मन में आ जाती है, आप उसको लिख देते हैं, दूसरी पंक्ति आप तुक मिला देते हैं तो तुकबंदी कविता नहीं होती। मैं तुझे खिला दूंगा बैल की सानी, तुझे याद आ जाएगी अपनी नानी, मतलब इस तरह से कोई लिख रहा था वो कविता नहीं। उसमें एक विचार होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, वो पकना चाहिए धीरे धीरे। जैसे आप तो जानते हैं वो आप खाने के बड़े शौकीन हैं, वो जब कोई जब अच्छी तरह से कोई चीज़ पकेगी नहीं तो वो स्वाद नहीं आएगा उसमें। तो कविता भी धीरे धीरे पकती है, धीरे धीरे रचती है, बसती है, और फिर उसको ठीक करना पड़ता है, मतलब उस पर काम। जैसे मैं कोई कविता लिखता हूँ तो मैं कम से कम मेरी कविता के 10 ड्राफ्ट बनते हैं, एक बार लिखूंगा फिर फाड़ के फेंक दूंगा, फिर उसको दूसरा लिखूंगा। कभी कभी एक शब्द के लिए मुझे एक एक घंटा, दो दो घंटा, एक एक दो दो दिन वेट करना पड़ता, वो शब्द ही नहीं आ रहा है।
जब तक सार्थक शब्द नहीं होगा तब तक डालेंगे नहीं,
बिल्कुल नहीं आएंगे। वो कल नरेश सक्सेना जी हमारे यहाँ बिलासपुर शहर में आए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक लय और ताल नहीं होगा तो वो कविता कैसे बनेगी। तो मैं आपको अपना एक रहस्य बता रहा हूँ कि मैं कविता लिखने के बाद, उस जमाने में तो कैसेट रिकॉर्डर चलता था, तो मैं रिकॉर्डिंग करता था कविता की, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको सुनता था कि इसमें ताल कहाँ पर टूट रहा है, और जहाँ मुझे लगता ये ताल टूट रहा है फिर मैं वहाँ पर शब्द बदलता था। मेरी सारी कविता लिखने की प्रोसेस यही है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई कवि इस तरह से कविता लिखता हो जैसे मैं लिखता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आज भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग करके सुनता हूँ, और जब जो कुछ खटकता है मुझे, लय खटकती है, ताल खटकता है, आपने देखा ही है मेरा कविता पाठ, तो वो पूरे लय और ताल में और उसी भाव के साथ चलता है। अगर वो चीज़ नहीं आएगी तो वो कविता नहीं होगी। तो उस दृष्टि से कहें तो मेरे लिए कविता एक तपस्या है, एक साधना है।
अच्छा, तो ये बताइए नौकरी के दौरान कविता करने में आपको आनंद आया या नौकरी के बाद?
वैसे एक चीज़ आपको पता नहीं है, एक रहस्य है कि मैंने नौकरी पूरी 60 साल की उम्र तक नहीं की, मैं अभी 60 प्लस हूँ, लेकिन मैंने नौकरी लगभग मैंने 2008 में वीआर ले लिया था, और उसका कारण वही था कि मुझे लगा कि नौकरी जितनी की जा सकती थी कर ली। वैसे तो मेरे स्वभाव में नौकरी करना था नहीं कभी, लेकिन क्योंकि मैंने पुरातत्व में एमए किया था, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट था मैं, उस जमाने का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, तो मुझे प्रोफेसर बनना था, पीएचडी करनी थी, मतलब वो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि मैं प्रोफेसर बनता, लेकिन मैं लेखक बन गया, कवि बन गया, और नौकरी मुझे मिल गई बैंक में। तो नौकरी करते हुए वो तकलीफ तो हुई मुझे, लेकिन मैंने नौकरी जल्दी छोड़ दी, और नौकरी कर छोड़ने के बाद जब पूरा समय मेरे पास हो गया तब लिखने में मुझे ज़्यादा आनंद आया।
अच्छा, ये बताइए कि जिनसे पद्य सधता है उनसे गद्य नहीं सधता, जिनसे गद्य सधता है उनसे पद्य नहीं सधता, आप दोनों कैसे साथ लेते हो?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने जो शुरुआत की दो रचनाएं लिखी बचपन में, एक नवभारत अखबार हमारे यहाँ आता है उसमें एक बच्चों की फुलवारी कॉलम आता था, तो बच्चों की फुलवारी कॉलम में मैंने एक चौथी क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक छोटी सी लघु कथा लिखी उसमें, और उसके बाद दूसरी बार मैंने एक कविता लिखी। तो मैंने शुरुआत ही कविता और कहानी दोनों से एक साथ की, और लगातार इस तरह से चलता गया कि कभी कहानी लिख देता था, कभी कविता लिख देता था। ठीक है, नाम मेरा लंबी कविताओं के कारण कविता में हुआ, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ साधा। तो ये हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ कि कविता और गद्य ये दोनों आप साथ साथ चलिए, ऐसा नहीं सोचिए कि हम कविता अभी लिख लेते हैं गद्य कभी बाद में लिख लेंगे, आप साथ साथ लिखते रहिए। और कविता के जो कवि होते हैं उनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना गद्य के किसी कवि की मुक्ति संभव नहीं है, गद्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गद्य एक तरह से आत्मा होती है उस साहित्य की। कविता में तो आप बहुत सारे जोड़ तोड़ कर देते हैं, करेंगे छंद में लिखेंगे तो आप यहाँ से काटेंगे, वहाँ से तोड़ेंगे, या फिर उसको लाइन बनाएंगे, मात्रा में बनाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ ये आ रहा है कि नहीं, जो मैं खुद करता हूँ सभी कवि करते हैं। लेकिन गद्य में जो एक सरल प्रवाह चलता है, बिंब आते हैं, कल्पनाएँ आती हैं, आसपास के दृश्य आते हैं, तो हर लेखक की ये क्षमता होती है कि उन दृश्यों को कैसे वो गद्य में उतार सकता है। तो ये फिर ये वाक्य कह रहा हूँ कि गद्य के बिना एक कवि की मुक्ति संभव नहीं।
आपके कविता का जिक्र लोकसभा में हुआ था।
राज्यसभा में,
राज्यसभा में
वो बड़ी मजेदार घटना है,
बताइए।
वो मैंने 1995 में एक कविता लिखी थी, अनकही, वह कहता था वह सुनती थी, वो एक स्त्री विमर्श की कविता थी कि पुरुषों को ही आज तक कहने का अधिकार मिला है और स्त्रियों को कहने का नहीं मिला। अब वो कविता मेरी नवभारत में छपी 1995 में 27 अगस्त 1995 के नवभारत में, और उसके बाद 1998 में वो छपी वागर्थ में। वागर्थ पत्रिका कोलकाता की पत्रिका है, बड़ी प्रतिष्ठित भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका है। तो कविता उस समय छप गई। उसके बाद मेरा संकलन आया है, एक तो 1994 में संकलन आया था गुनगुनी धूप में बैठकर, और उसके बाद लंबी कविता आई 2005 में, फिर उसके बाद एक संकलन 2016 में आया। लेकिन वो ये कविता पता नहीं कैसे छूट गई, कि मतलब ऐसी बहुत सारी कविताएं जो छूट गई, तो वो संकलन में नहीं ले पाया मैं। फिर जब ये अपना सोशल मीडिया चला, तो एक दिन मैंने वो व्हाट्सअप या कहीं पर वो इस कविता को टाइप करके डाल दिया और नीचे नाम भी लिख दिया अपना। अब वो कविता साल भर के बाद ये कविता मेरे पास आई, और उसमें नीचे अमृता प्रीतम लिखा हुआ था, मेरा नाम गायब। अमृता जी की एक बड़ी खूबसूरत कविता, आजकल वो चला है ना, हरिवंश राय बच्चन की खूबसूरत कविता, प्रेमचंद की खूबसूरत कविता, जबकि प्रेमचंद जी ने लिखी नहीं कभी, तो किसी के भी नाम से कुछ भी देना शुरू कर दिया। तो वो कविता जब मेरे पास आई, तो उनको मैंने लिखा जिन्होंने भेजा था, कि भैया ये तो मेरी कविता है। उन्होंने सर हमारे पास तो ये अमृता जी के नाम से आई है, और सब जगह लोग अमृता प्रीतम के नाम से भेज रहे हैं। तो फिर मैंने वो अपनी निकाली सब नवभारत और वागर्थ की पुरानी फाइल, उसको फोटोकॉपी करके वो भेजा कि भाई देखो ये कविता मेरी है, और आज की नहीं है, बहुत पुरानी कविता है। और अमृता जी का पूरा खजाना आप देख लीजिए, उनका पूरा प्रकाशन देख लीजिए, उनके पास एक उनकी कविता नहीं है, कहीं नहीं है, उनका तो सब छप चुका है, कुछ नहीं बचा छपने का। अगर छपा होता तो ये कहीं पर तो होती कविता उनके किसी संकलन में। तो फिर कुछ लोगों को पता चला। अब वो ये 2017 की बात है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2017, 5 साल पहले। एक हमारे मित्र हैं अरुण अग्रवाल, तो उनकी बेटिया की शादी थी, तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम उसमें लगे हुए थे। तो रात को 11 बजे वो फोन आया हमारे एक मित्र का, रायपुर से रंगकर्मी है निसार अली पिप्टा के, भैया तुम्हारी कविता राज्यसभा में अमृता प्रीतम के नाम से पढ़ी जा रही है। हम लौटे घर 12 बजे रात को, जी टी वी खोला, तो उसमें राज्यसभा का वो आ रहा था, तो एक रजनी पाटिल हैं सांसद कांग्रेस की, वो पढ़ रही हैं, वो वेंकैया नायडू जी राज्यसभा में अध्यक्ष हैं, और वो बढ़िया, और वो पढ़ रही हैं, वो देखिए आजकल कहने से कुछ नहीं होता, भाषण देने से कुछ नहीं होता, हम आपको अमृता प्रीतम की कविता सुनाते हैं स्त्रियों के पक्ष में, और वो उन्होंने पढ़ दी मेरी कविता। मैंने भाई बैठे बैठे टीवी को नमन किया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है,
तो हमारे श्रोता उस कविता को सुनना चाहेंगे।
वो कविता मैं सुनाता हूँ। उसके बाद एक वाक्य बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मुकेश नेमा जी एक हैं, वो उनका फ़ोन आया, बहुत बड़े साहित्यकार हैं दिल्ली में, और राज्यसभा के जो कृषि मंत्री हैं अहलूवालिया जी, उनके वो पीए हैं आईएएस हैं, तो उनका फ़ोन आया कि भाई साहब आपकी कविता जो है वो अमृता प्रीतम के नाम से पढ़ दी गई है, अब आप एक काम कीजिए, एक मेल हमको लिख दीजिए, हम उसको वेंकैया नायडू जी को फॉरवर्ड कर देंगे, चूँकि राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा के जो मिनट्स हैं उसमें वो ठीक कर दी जाएगी। तो फिर वो पत्र व्यवहार हुआ, सब हुआ, और वो कविता हमारी ठीक कर दी गई, और पूरे वो देश के अखबारों में और चैनल वैनल पे आया, आईबीएस पे, तब वो जाके ठीक हुई। अब तो खैर काफ़ी लोगों को पता है कि वो हमारी कविता है, वो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ।
पर आपकी कविता अमृता प्रीतम के नाम से चली, मतलब कविता का स्तर अमृता प्रीतम के स्तर के बराबर था तब तो।
वो नहीं, लोगों ने कहा मुझे कि इसमें जो संवेदना है, मतलब जो स्त्री का जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, और उसकी जो एक छटपटाहट है, वो इस कविता में है, और कोई स्त्री ही इसको लिख सकती है, पुरुष तो कोई लिखे नहीं सकता। तो हमने कहा भाई अब मैंने लिखी है तो मेरे भीतर भी एक स्त्री है।
ओशो कहते थे कि हर पुरुष में स्त्री होती है और हर स्त्री में पुरुष।
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो
चलिए कविता सुनाइए।
कविता ऐसी है कि उसमें एक बिंब है छोटा सा, कि हम लोग जब पिकनिक विकनिक पे जाते हैं, तो वो एक पर्चियाँ नहीं लिखते हैं कि वो पर्ची ऐसे मोड़ कर डाल देते हैं, कोई भी एक पर्ची उठाओ और उसमें जो लिखा रहता है वो उसको करना पड़ता है, गाना गाकर सुनाओ या लंगड़ी चाल करके दिखाओ। तो इसमें यही बिंब है। वह कहता था, वह सुनती थी, सदियों से जारी था एक खेल कहने सुनने का। वह कहता था, वह सुनती थी, सदियों से जारी था एक खेल कहने सुनने का। खेल में थी दो पर्चियां, एक में लिखा था कहो, एक में लिखा था सुनो। एक में लिखा था कहो, 1 में लिखा था, सुनो, अब यह नियति थी या महज संयोग कि उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। वह सुनती रही, उसने सुने आदेश, उसने सुने उपदेश, उसने सुने आदेश, उसने सुने उपदेश। बंदिशें उसके लिए थी, वर्जनाएं उसके लिए थी, जबकि वह जानती थी कि कहना सुनना नहीं है केवल भाषा की क्रियाएं। बंदिशें उसके लिए थी वर्जनाएं, जबकि वह जानती थी कि कहना सुनना नहीं है केवल क्रियाएं। राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई। आदेश, राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो, वह अहिल्या हो गई। प्रभु ने कहा घर से निकल जाओ, वह सीता हो गई। चिता से निकली चीख किन्हीं कानों ने नहीं सुनी, वह सती हो गई। घुटती रही उसकी फरियाद, सिले रहे उसके होंठ, रुंधा रहा उसका गला, अटके रहे उसके शब्द, उसके हाथ कभी नहीं लगी वह पर्ची जिस पर लिखा था कहो।
क्या बात,
ये कविता है।
इस कविता को तो सच में कोई स्त्री ही लिख सकती है, पुरुष नहीं लिख सकता। जो कमाल आपने किया, बहुत बढ़िया कविता। तो शरद जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।
चलिए,
आपसे मिलने का अच्छा संयोग रहा, और संज्ञा टंडन जी के सौजन्य से आज रेडियो अर्पा में आपकी वार्ता प्रसारित करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल का नमस्कार स्वीकार करें।
नमस्कार, धन्यवाद।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। अभी आप सुन रहे थे कवि और लेखक श्री शरद कोका से डॉक्टर द्वारका प्रसाद अग्रवाल की एक बातचीत।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।